ஹரிஹந்தானம் அணமோசு காணம் உணமோ ஆயிரி ஆணம் ணமோவாராணம் ணமோலோயேணம் மோட்சமார்கேத்தாரம் வேத்தாரம் கர்மபூவிரதாம் ஜாதாரம் விஸ்வதத்வானாம் வந்தே சதுகுணலப்தே வந்தே சதுகுணலப்தே சத்வார் சூத்ரு மகான் சாஸ்திர கே ஆதார் சே பாஞ்சமே அத்யாய கோ ஆதார் பனாகர் யஹாம் குச் திரவ்யோ கே சந்தர்ப மே சர்ச்சா சல் ரஹி தி. காஃபி சர்ச்சா கல் தக் ஹம் யஹாம் கர் சுகே ஹே ஔர் குச் மஹத்வபூர்ண திரவ்யோ கே சந்தர்ப மே ஜோ பாதே ஹே வோ சர்ச்சா ஆஜ் ஹமாரே கோ கர்னி ஹே. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि द्रव्य होता क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, द्रव्य कहते किसे हैं, द्रव्य की परिभाषा क्या है। तो इन्होंने कहा सत द्रव्य लक्षणम एक सूत्र दिया है। देखिए आप 29 नंबर सूत्र है, कल छोड़ा था हमने। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। सत्य पांचवे अध्याय का 29 नंबर है। हिंदी के अंक पढ़ने में आते हैं, हिंदी वाले अंक पढ़ लेते हैं ना। सत्य द्रव्य लक्षणम, लक्षणम माने लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण कहते हैं जो पहचान का चिन्ह हो, जिससे पहचाना जाए उसे लक्षण कहते हैं। गुण और लक्षण में फर्क है महेंद्र भाई। वस्तु में गुण बहुत सारे हो सकते हैं, उन सभी गुणों में से वह गुण जिस गुण से वस्तु को पहचाना जाए वो उसका लक्षण बन जाता है। जैसे समझिए आत्मा की बात करें तो आत्मा में कितने गुण है? अनंत है। अस्तित्व भी आत्मा का गुण है लेकिन लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। आत्मा में अस्तित्व है या नहीं है? अस्तित्व है। लक्षण क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इससे पहचान नहीं सकते आप आत्मा को। ये तो सब द्रव्यों में पाया जाता है अस्तित्व। तो फिर अब अमूर्तिकपन, अमूर्तिक तो होता है आत्मा, आत्मा में अमूर्तिकपन है वो दिखाई नहीं देता है। ये अमूर्तिकपन आत्मा का लक्षण है क्योंकि लक्षण नहीं है, गुण है। गुण है और वो भी सामान्य असामान्य है, जो दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है। धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य भी अमूर्तिक है, काल द्रव्य भी अमूर्तिक है। अमूर्तिकपन तो सामान्य है और पुद्गल में नहीं पाया जाता, इसलिए विशेष है। इसलिए सामान्य विशेष कहते हैं अमूर्तिक गुण को। अकेला सामान्य नहीं और अकेला विशेष भी नहीं, कुछ द्रव्यों में पाया जाता है, पांच द्रव्यों में, इसलिए सामान्य। पुद्गल में नहीं पाया जाता है इसलिए विशेष, सामान्य विशेष, अमूर्तिकपन, लेकिन लक्षण नहीं है। अच्छा सुख, सुख तो अकेले आत्मा में ही होगा। क्यों सर? सुख दुख तो अकेले आत्मा में ही होगा ना। सुख दुख अकेले आत्मा में ही होता है, चारित्र भी आत्मा में ही होता है, लेकिन इनसे आत्मा को या जीव को पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए उपयोगो लक्षणम बनाया हुआ स्वामी आचार्य ने। इसी महान शास्त्र के दूसरे अध्याय में एक सूत्र दिया था, उपयोगो लक्षणम, उपयोग से पहचानो, ज्ञान से पहचानो। जिसमें ज्ञान है वो जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो आत्मा है। ये आत्मा की पहचान का चिन्ह। तो लक्षण शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिससे वस्तु की पहचान हो उसे लक्षण कहते हैं। समझना ही बात। द्रव्य को किससे पहचाने? द्रव्य की पहचान का क्या चिन्ह है? द्रव्य को कैसे पहचाने? द्रव्य का क्या लक्षण है? बोले सत्य, सत्यपना ये द्रव्य का लक्षण है। सर ये सत्य क्या कह दिया आपने? सत्य क्या होता है? सब क्या होता है? ये तो आप कह रहे हो, लोग तो ऐसा समझते नींबू का सच ऐसा सच होता है, सुना आपने? हर कुछ नहीं सुना, हिंदी में नहीं चलता ऐसा, ये किसका सत्य है? जैसे हाँ तत्व, उसका एसेंस निकाल लिया उसका, तो वो होता है क्या? तो द्रव्य का लक्षण वो सत्व है क्या? कि नहीं, सुनो तो सही, उमा स्वामी आचार्य से ही पूछो, जो समझ में नहीं आए वो उमा स्वामी आचार्य से पूछो, वही जवाब देंगे। शिष्य को शिष्य ने पूछा द्रव्य किसे कहते हैं, अब इतनी चर्चा चल रही है, आप द्रव्य द्रव्य समझा रहे हो, द्रव्य कहते किसको है ये तो बता दो, उन्होंने कह दिया सब द्रव्य लक्षणम। फिर पूछा सब किसे कहते हैं, महाराज मेरे को समझ नहीं है, आप बता दो। तो उन्होंने आगे सूत्र लिखा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी उसका जवाब देंगे आचार्य देव, आगे सूत्र दिया है, 30 नंबर का सूत्र है, सूत्र नंबर 30 इस पांचवे अध्याय का, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। उत्पाद व्यय भी हो और ध्रुवता भी हो, सुनो भाई साहब, ये जैन दर्शन और सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा किसी की ताकत नहीं है जो ऐसी बात कह सके। एक वस्तु जो उत्पाद व्यय कर रही है वो परमानेंट भी है, जो वस्तु परमानेंट है वो वस्तु उत्पाद व्यय भी कर रही है, नष्ट भी हो रही है, उत्पन्न भी हो रही है और मेंटेन भी है, ऐसा कैसे होगा? आपका 5 किलो वजन कम भी हो जाए और 15 किलो बढ़ भी जाए, फिर भी आप ये कहो कि मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, कैसे चलेगा? ध्रुव कहते हैं मेंटेन को, उत्पाद कहते हैं नया उत्पन्न होने को, व्यय कहते हैं नष्ट हो जाने को, ये तीनों बातें एक दूसरे से विपरीत दिख रही है और तुम कह रहे हो इन सबको मिलाकर के एक वस्तु होती है, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात हमारे समझ से परे है। स्वामी आचार्य की बात से भाई साहब ये हमारी बात नहीं है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की बात है, इन लोग के नाथ कह रहे हैं, लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति का तो दिमाग काम नहीं करे इस बात को सुनकर, साधारण आदमी तो ये कहे कि यार ये कैसी बात है, ये तो पागलों जैसी बात है, ऐसा भी है ऐसा भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, द्रव्य माने नित्य, उत्पाद व्यय माने अनित्य, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, क्या पागल हो जाते हम भी तुम्हारे को पागल बनाने के लिए, हमको इस तरह की बातें करते हो आप, हमें पागल बना रहे हो, हम बहुत बुद्धिमान है समझदार है, हम आपके बहकावे में नहीं आ सकते। ये सुनो भाई, ये वस्तु का स्वरूप है, ये सत्य का स्वरूप है, सत्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता से सहित ही होता है, सत्य का सत्यपना कभी नहीं मिटता, इसलिए वो ध्रुव है, लेकिन उस सत्य में उत्पाद व्यय निरंतर चलता रहता है, इसलिए वो अध्रुव भी है। परमानेंसी विद चेंज, ये स्वरूप है सत्य का, परमानेंसी विद चेंज, एक बदलाव के साथ में परिवर्तन सब में हो रहा है, सब में हो रहा है। मयूर भाई जब आपसे पहली बार मिला था उस समय में और अभी में तो आपने बहुत चेंज आ गया, मगन भाई बहुत बदल गए आप पहले से, बहुत बदल गए हैं। तो मुकुंद भाई है ना, ये कैसे पहचाना तुमने, ये चीज किस तरह से पहचानी? किसी व्यक्ति को आप समझिए, शोले में देखा था अमिताभ बच्चन को, और कौन बड़े करोड़पति में देखा, कितना अंतर दिखा? 30 साल का अंतर हो गया लगभग, वो 30 साल के अंतर में वो अमिताभ बच्चन कैसा दिखता है, फिर भी आपने पहचान लिया, और अरे तो अमिताभ बच्चन, ये कैसे पहचाना आपने, कैसे पहचाना? किसी व्यक्ति से 12-15 साल बाद में मिलते हैं और अचानक मिलकर के कहते हैं, अरे यार बचपन में साथ पढ़ते थे यार, बहुत बदल गया यार तुमसे, ये सच बदलाव बदला के नहीं बदला, यदि बदल गया होता तो तुमने पहचाना कैसे, और यदि नहीं बदला तो तुम कह तो रहे हो बहुत बदल गया, ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है, यही है उत्पाद व्यय के साथ में ध्रुवता, परमानेंसी विदेशी। बहुत व्याख्याएं हुई, शास्त्र भरे पड़े इन व्याख्याओं के लिए, उत्पाद व्यय ध्रुवता के लिए। छोटी छोटी बातें इतनी विस्तार से कही है शास्त्रकारों ने, इस सूत्र को सारा जैन शासन टिका हुआ है। जैसा कल कहा महेंद्र भाई ने, सारे आगम इसके ऊपर टिके हुए, आगमों का मर्म है ये। सत द्रव्य लक्षणम, मतलब मुझमें ध्रुवता है। अब ध्यान देना, मैं द्रव्य हूँ या नहीं ये नक्की करो, मैं द्रव्य हूँ। इसका मतलब जो द्रव्य होता है वो सत होता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण है कि द्रव्य की पहचान का चिन्ह। जो भी द्रव्य होगा वो सत होगा। मैं भी द्रव्य हूँ, एक जीव द्रव्य हूँ, इसका मतलब मैं भी सत हूँ। और जो सत होता है उसमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता होती है, इसका मतलब मुझमें भी उत्पाद व्यय और ध्रुवता है। इसका मतलब मैं कितना भी बदल जाऊं लेकिन उसके बावजूद मेरे अस्तित्व को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझमें ध्रुवता है। ध्रुव पर दृष्टि दो, उत्पाद व्यय अपने आप बदलेगा। बोलो, उत्पाद व्यय और ध्रुवता, इन दोनों में से दो पार्ट गड़बड़ के, एक तरफ है उत्पाद व्यय और एक तरफ है ध्रुवता। बोलो दोनों में से तुम्हें क्या पसंद है? बोलो गिरीश भाई, ध्रुवता पसंद है? क्यों पसंद है तुम्हें ध्रुवता? हैं? नहीं, कायम करेंगे, पसंद क्यों है? ध्रुवता क्यों पसंद कर रहे हो? बोलो, ध्रुवता क्यों पसंद कर रहे हैं आप? तो ध्रुवता ही नहीं है। सुनो, मुझे ध्रुवता तो पसंद है लेकिन मुझे उत्पाद यह भी पसंद है। क्यों क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि जो अतिंद्रिय आनंद आएगा ना, वो ध्रुव में नहीं आएगा, वो उत्पाद यह में आएगा। जो मिथ्यात्व का अभाव होगा ना मुकुंद भाई, वो उत्पाद व्यय में होगा, वो ध्रुव में तो मिथ्यात्व है ही नहीं। जो सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी, जो संसार दशा मिटेगी, जो सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी, वो उत्पाद व्यय में होगी, वो ध्रुव में नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर ध्रुव की जरूरत नहीं है। जब सारा काम ही उत्पाद व्यय में होना है तो फिर ध्रुव को हटाओ ना यार। ध्रुव का क्या चक्कर लगाया कि सुनो, ध्रुव के लक्ष्य से उत्पाद व्यय में परिवर्तन होता है। जो उत्पाद व्यय वाली पर्याय इस ध्रुव का लक्ष्य करे, वो उत्पाद व्यय मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कषायों को छोड़कर उससे बदलकर सम्यक्त्व रूप परिणमन कर जाए। कब? जब लक्ष्य ध्रुव का हो। ये पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप हमारे पक्ष में है, उत्पाद व्यय और ध्रुव। आपको मालूम है वस्तु के दो मूल पार्ट है, वस्तु के दो हिस्से हैं, दो मूल बड़े पार्ट हैं। एक परमानेंट पार्ट है और एक टेम्परेरी है, चेंजेबल है। परमानेंट वाले पार्ट का नाम है ध्रुव, टेम्परेरी वाले पार्ट का नाम है उत्पाद व्यय। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में कहें तो परमानेंट वाले पार्ट का नाम है द्रव्य और उत्पाद व्यय वाले पार्ट का नाम है पर्याय। दो हिस्से हो गए, एक है द्रव्य और दूसरा पार्ट है पर्याय। अब बड़ी गजब की बात है करणेश भाई, इतनी गजब की बात है कि ये जो ध्रुव है ना, जो नहीं बदलता है, इसमें तो हमारा खजाना भरा है। सारे गुण हैं, सारे धर्म हैं, सारी शक्तियां हैं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, ये तो कहां भरी है? बोले तो ध्रुव वाले पार्ट में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, ये सब कहां भरे हैं? ध्रुव वाले पार्ट में। बोलो, तुम अपनी शक्तियों को निकालना चाहते हो क्या? कि नहीं, ये ध्रुव वाला पार्ट तुम्हारे को विश्वास दिला रहा है, डोंट वरी, अनचेंजेबल है। तुम्हारी शक्तियां परमानेंट है, तुम्हारी ये शक्तियां कहीं इधर उधर नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे वज्र के किले में और ऐसे दरवाजे में बंद है जिसमें से वो निकलता नहीं है, ये ध्रुव है। अच्छा चलो, दूसरे पार्ट की बात करो। दूसरे पार्ट में क्या क्या है अभी वर्तमान में? राग है, द्वेष है, कषायें हैं, मिथ्यात्व है, विकार है, अज्ञानता है, दुख है, परेशानियां हैं। ये सब कौन से पार्ट में? उत्पाद वाले पार्ट में, पर्याय वाले पार्ट में। अब मेरा प्रश्न ये है, इन सब को बदलना चाहते हो, दूर करना चाहते हो या नहीं? जरूर करना चाहते हैं, इनको तो हम दूर करना चाहते हैं, इनको निकाल देना चाहते हैं। बोले डोंट वरी, ये जिस पार्ट में है उसका स्वभाव ही बदलना है। तो जिस पार्ट में गड़बड़ी है वो चेंजेबल है, और जिसमें सुख निदान खजाने भरे हैं वो अनचेंजेबल है। ये पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप, ये पूरी वस्तु व्यवस्था, ये अपने फेवर में, पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप अपने को फेवर कर रहा है। यार तुम टेंशन किस बात की ले रहे हो, टेंशन का काम ही नहीं है कुछ भी। अब समस्या ये है कि इससे बदले कैसे? अरे बदले कैसे, अपने आप बदल रहा है। एक क्षण मात्र के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता जब इसका उत्पाद व्यय रुक जाए। एक समय के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता जब इसकी ध्रुवता कायम न रहे। ध्रुवता कायम रहे और उत्पाद व्यय निरंतर चालू रहे। बोलो कैसा स्वरूप है इस उत्पाद व्यय ध्रुवता का? एक ही वस्तु में एट ए टाइम दोनों चीजें, कह सकता है कोई सर्वज्ञ के अलावा और किसी में ताकत नहीं है इस बात को कहने की? सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति इस बात को कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। कौन जाने कि परमानेंट विजय चेंज क्या चीजें? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान उनका दिव्य ज्ञान है जो इस प्रकार की बात कहता है। इसको समझाने के लिए कई एग्जांपल दिए शास्त्रकारों ने। एक आप्तनिमांसा नामक ग्रंथ है अपना, आप जानते हैं आप्तनिमांसा, आचार्य समंत भद्र आचार्य द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है आप्तनिमांसा। वो आप्तनिमांसा ग्रंथ क्या चीज है? तत्वार्थ सूत्र है ना ये पांच पेज का
जी।
क्या मुकुंद भाई, पांच पेज के इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर समंत भद्र आचार्य देव ने एक व्याख्या लिखी, एक टीका लिखी, इसके विस्तार में इनके सूत्रों की व्याख्या की। वो इतनी बड़ी व्याख्या थी, इतनी बड़ी व्याख्या थी, इतनी बड़ी व्याख्या थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है। उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। एविडेंस मिलते हैं सिर्फ उसके कि वो था, वो लिखा था उन्होंने। इस सत्वार सूत्र की व्याख्या, नाम क्या बतलाया? गंधहस्ती महाभाष्य, महाभाष्य लिखा था उसने उन्होंने। अब सुनो गजब की बात, वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सत्वार सूत्र ग्रंथ के सिर्फ मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म उग्रताम जातारम विश्व तत्वानम वंदे सदगुण लब्धे, इन दो लाइनों की व्याख्या उसी महाभाष्य की वो अवेलेबल है, सिर्फ दो लाइन की व्याख्या, और वो ग्रंथ बन गया आप्तनिमांसा। क्या क्या सामने सिर्फ दो लाइन की व्याख्या मोक्ष मार्ग से नेतारम, इसकी व्याख्या वो पूरी की पूरी व्याख्या एक ग्रंथ बन गया जिसे आप्तनिमांसा के नाम से जाना जाता है। अवेलेबल है हमारे सामने, 114 कारिकाएं हैं उसकी, 114 श्लोक हैं, दो लाइनों के ऊपर व्याख्या। अब सोचो कितना बड़ा ग्रंथ होता वो, उसके 58, 59, 60 इन श्लोकों में उत्पाद व्यय ध्रुवता को उदाहरणों से समझाया है। उत्पाद व्यय ध्रुवता की चर्चा की है, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे। न्याय शास्त्र का महान सिद्धांत है, महान ग्रंथ है वो। अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं उनको पढ़ने से। फिर वो आप्तनिमांसा जो लिखी ना, उसके ऊपर और टीकाएं लिखी गई, आप्त परीक्षा आदि, और वो सब सब उसके विस्तार है और बहुत डिटेल में। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने, पयोव्रतो न दध्यति न पयोत्ति दधिव्रत है, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्त्वं त्रयात्मकम्। वस्तु के त्रयात्मक पने की सिद्धि की, उत्पाद है ध्रुवता, इनकी सिद्धि की। उन्होंने कहा जिसके दूध पीने का व्रत है ना, क्या दूध ही पीऊंगा मैं, वो व्यक्ति दही नहीं लेता, दही नहीं खाएगा, दूध का ही नियम है उसके आज का। जिस व्यक्ति के दही लेने का नियम है वो व्यक्ति दूध नहीं लेता है, लेकिन जिसके गोरस का त्याग है वो दोनों नहीं लेता है। इसका मतलब दूध की अवस्था बदल करके दही की अवस्था हो गई, दही की अवस्था के पहले दूध की अवस्था थी, दूध की अवस्था में दही नहीं है, दही की अवस्था में दूध नहीं है, लेकिन गोरस अवस्था में दोनों है। समझ में आ रहा है? जिसके गोरस का त्याग है वो दोनों चीजों का त्याग करेगा। एक और बहुत मजेदार उदाहरण दिया उन्होंने, घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्तम जनो याति सहेतु कम। उत्पाद के ध्रुवता को समझाने के लिए तो संस्कृत समझ में आई, यही समझ में। घट माने घड़ा कलश, मौली मुकुट, और सुवर्ण गोल्ड अर्थी उसको चाहने वाले, एक घड़े को चाहने वाला है, एक मुकुट को चाहने वाला है, एक गोल्ड को चाहने वाला है। उसकी व्याख्या की इस श्लोक की टीकाकारों ने, ईश्वरी लिख दी छोटी सी कहानी बनाओ इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या कहानी लिखी कि एक राजा था, राज्य चलता था बहुत लंबा चौड़ा। वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ अपनी पुत्री से, तो पुत्री की इच्छा के अनुसार उसने 2 किलो गोल्ड का एक अच्छा कलश बनाया। पुत्री को बहुत पसंद था, राजा के पास में गोल्ड था बहुत, तो उसने उसका कलश बना दिया। वो बहुत खुश हुई कलश बन गया तो। लेकिन 1 साल बाद राजा का जो पुत्र था उसने कहा कि मेरे को तो मुकुट चाहिए गोल्ड का और 2 किलो गोल्ड का चाहिए। तो राजा ने क्या किया कि वो जो कलश बनाया था गोल्ड का उसे तुड़वा कर उसका मुकुट बना दिया। तो ऐसा मुकुट बनने पर वो राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ, और राजकुमारी का क्या हुआ कि वो फूट फूट के रोने लगी, और राजा का क्या हुआ कि वो मध्यस्थ भाव है कि गोल्ड तो गोल्ड। क्या फर्क पड़ गया? वापस बोलता हूँ श्लोक, मूल श्लोक, घट मौली और सुवर्ण अर्थी, एक घड़े को चाहने वाला, एक मुकुट को चाहने वाला, और एक जिसकी दृष्टि गोल्ड पर है। घट मौली सुवर्ण अर्थी नाश उत्पाद और स्थिति और शोक प्रमोद माध्यस्तम जनो याति सहेतु कम। एक को शोक हो रहा है, एक को प्रमोद हो रहा है, और एक मध्यस्थ है। बतलाओ मध्यस्थ कौन रहेगा? जिसकी दृष्टि ध्रुव पर होगी वो मध्यस्थ रहेगा। राग द्वेष नष्ट करने की विधि क्या है? उत्पाद व्यय नष्ट करने की विधि क्या है? उत्पाद व्यय को दूर करने की विधि क्या है? उत्पाद व्यय से मुक्त होने का रास्ता क्या है? कि ध्रुव पर दृष्टि दो, अपने आप राग द्वेष मिट जाएंगे। जिसकी दृष्टि ध्रुव पर है वो पर्यायों की परवाह नहीं करता। अरे पर्यायों में कदाचित विकार राग द्वेष आदि भी होता हो तो होने दो, हमें कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि जिसकी दृष्टि ध्रुव पर है वो पर्यायों के फेरफार से विचलित नहीं होता। वो जानता है थोड़े समय तक बदलेगा और फाइनली परमात्मा अवस्था की प्राप्ति होगी, वो जानता है उसे। उत्पाद यह सौम्य उत्तम सत्य क्या सूत्र दिया है, मर्म भर दिया है सारे जनागम का। कितनी मार्मिक बात आ गई, बोलो क्या पसंद है तुम्हें? उत्पाद व्यय पसंद है, हम उत्पाद व्यय के गीत गा लेंगे, कोई बात नहीं। सारा काम तो पर्याय में ही होना है, सारा खेल तो पर्याय का ही है। उत्पाद व्यय में, अरे उत्पाद व्यय कितनी इम्पोर्टेंट चीज है दिनेश भाई। आपको उत्पाद व्यय पसंद नहीं था, लेकिन उत्पाद व्यय यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो ये सम्यक दर्शन किसमें होगा ये तो बताओ। वह अतिंद्रिय आनंद का रस किसमें आएगा? वो केवल ज्ञान की प्राप्ति किसमें होगी? वो आनंद सुख किसमें आएगा? रमेश भाई वो उत्पाद व्यय में होगा। कितना महत्वपूर्ण है ये बदलाव, हमारे लिए बहुत अच्छा है ये परिवर्तन, हमारे लिए बहुत अच्छा है।
इसके हिसाब से छह दर्शन के लिए हुआ।
हाँ, षट दर्शन खड़े हो गए, एक एक पक्ष को पकड़ करके षट दर्शन खड़े हो गए एकांतवादी। एक एक पक्ष को पकड़ लिया उन्होंने, ये ऐसा वैसा ही मानने लग गए। एक एक पक्ष को, किसी ने उत्पाद को माना, किसी ने जय को माना, किसी ने ध्रुवता को माना, किसी ने कुछ समय उत्पाद और कुछ समय जय को माना, किसी ने कुछ वस्तुओं में उत्पाद जय दोनों और ध्रुवता भी है, लेकिन कुछ वस्तुओं में, और कुछ वस्तुओं को परमानेंट नित्य का। अलग अलग दर्शन खड़े हो गए, अलग अलग संप्रदाय खड़े हो गए झगड़ा करने वाले, बिना सर्वज्ञ के कौन थे? सैकमे वापी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। हे जिनेन्द्र देव, आपके ये वचन की उत्पाद और ध्रुवता से युक्त वक्तु होती है, ये वचन इस बात को सिद्ध करते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं। किससे पहचान होती है? सर्वज्ञता की पहचान है। वस्तु की पहचान की चर्चा चल रही है, मेरी परमानेंसी की चर्चा चल रही है, सब मैया क्यों नहीं आएगा मेरे को? ये उत्पाद ये ध्रुवता, ये मेरा स्वरूप है, ये द्रव्य का लक्षण है, ये प्रत्येक वस्तु का लक्षण है, और उत्पाद ये ध्रुवता प्रत्येक वस्तु में होती है, ये इस बात को सिद्ध करती है कि वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती और वस्तु का कभी नाश नहीं होता। दुनिया की कोई ताकत मेरे अस्तित्व को मिटा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि मुझ में ध्रुवता है। मैं चैलेंज करता हूँ कोई मुझे मिटा के दिखाए, मुझे परवाह नहीं है। मैं बंदूक की गोलियों से नहीं डरता हूँ, बम विस्फोट मेरे ऊपर हो जाए तो मैं नहीं डरता हूँ, और मुझे तोप के आगे बम दिया जाए और विस्फोट किया जाए मुझे डर नहीं लगता है। घबराहट किस बात की है? घबराहट उसको हो जिसकी दृष्टि अकेली उत्पाद जय पर हो। मेरी दृष्टि उत्पाद जय के साथ में ध्रुवता पर भी है। तो क्या करें साहब, दोनों की दृष्टि कैसे रहेगी? तो उत्पाद जय दिखेगा या ध्रुवता दिखेगी, क्या करें दोनों में से? कि सुनो, उत्पाद व्यय में काम होने दो, दृष्टि ध्रुव पर रखो। दृष्टि ध्रुव पर, परिवर्तन पर्याय में। क्या कहा? दृष्टि ध्रुव पर रहेगी और परिवर्तन पर्याय में होगा। देखो आप चमत्कार है, ये चमत्कार नहीं है। स्विच यहां से दबाते हो और लाइट वहां जलती है, ऐसा ही है। जिसकी दृष्टि परमानेंट वस्तु पर होती है उसे परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है। परमानेंट सुख की प्राप्ति का उपाय परमानेंट पर दृष्टि देना है। बहुत मार्मिक सूत्र है, मैं आपको पता है इन सूत्रों को, ये उत्पाद द्रव्य युक्तम जैसे सूत्र हैं, इन सूत्रों को इन्होंने यहाँ क्यों दिया इस अध्याय में? दृष्टि बदलनी है। दूसरी बात ये है कि इतनी छोटी सी रचना थी, कुछ सूत्र ऊपर कुछ सूत्र नीचे, ये बिल्कुल सेंटर में रखे हैं सूत्र। ऊपर के सूत्र कहीं बारिश से चले नहीं जाएं, नष्ट हो जाएं। नीचे जमीन से जहाँ रखे हैं वहाँ से गल गए तो नष्ट हो जाएंगे। ये तत्वार सूत्र महान ग्रंथ पूरा का पूरा बचा भी न रहे, मान लो कुछ नष्ट भी हो जाए तो कम से कम ये बीच वाले सूत्र तो बचे रह जाए। इतना समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, और ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। उत्पाद जय द्रव्य, सारे जैन शासन को यदि किसी एक दो सूत्रों में रखना हो तो उनमें ये उत्पाद जय द्रव्य युक्तम सत्य सर्वोपरि सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहा था ना, जो इतना इम्पोर्टेंट सूत्र, उस सम्यक दर्शन का जनक है ये सम्यक दर्शन का बाप है। इससे सम्यक दर्शन पैदा होता है, इसके बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन होगा उत्पाद व्यय में, मिथ्यात्व का अभाव होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये काम होगा उत्पाद व्यय में। लेकिन उत्पाद व्यय को देखते रहने से उत्पाद व्यय में बदलाव नहीं होगा। दुख को देखते रहने से काम नहीं चलेगा, राग द्वेष को देखते रहने से राग द्वेष नहीं मिटेगा, विकार को देखते रहने से विकार नहीं मिटेगा, स्वभाव को देखने से विकार मिटेगा। विकार को मिटाने का उपाय स्वभाव को देखना है। आप कहाँ देख रहे हैं? आपको विकार दिख रहा है कि स्वभाव दिख रहा है? ज्ञानियों को स्वभाव दिखता है इसलिए उनका विकार मिट जाता है, जिनको विकार दिखता है वो स्वभाव को नहीं देख पाते। सुबह हमने चर्चा की थी, जो जैसा देखते हैं वे वैसे बने रहते हैं। तुम विकार को देखोगे तो विकार ही बने रहोगे, तुम स्वभाव को देखोगे तो स्वभाववान बन जाओगे, वो स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाएगा। इसलिए भाई ये सूत्र रट लेना दिमाग में, उत्पाद ये द्रव्य उत्तम। कोई व्यक्ति तुम्हारे को मारने, दुर्घटना हो गई, चल बसे कोई बात नहीं, फिर चले गए उनकी चिंता नहीं, पर्याय बदल गई, उत्पाद ये। लेकिन फिर भी ये परमानेंट नहीं है। एक पुद्गल के परमाणु को कोई मिटा सके ऐसी सामर्थ्य नहीं किसी में, क्योंकि पुद्गल का परमाणु भी उत्पाद ये ध्रुवता से युक्त है। सिद्ध अवस्था में भी उत्पाद ये हो रहा है, निबोध अवस्था में भी उत्पाद व्यय चालू है, सिद्धों में भी है। शंका होती है सिद्धों में कैसे होगा? वस्तु स्वरूप है उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य। मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्ध भगवान सत्य नहीं है क्या? सिद्ध भगवान वस्तु नहीं है क्या? सिद्ध भगवान भी तो आत्मा है, परमात्मा, आत्मा तो है, सिद्ध भगवान की आत्माएं, ये भी आत्माएं जीव द्रव्य हैं, और जीव द्रव्य हैं तो उत्पाद वह ध्रुवता है, उत्पाद वह ही संयुक्तता, ऐसा पाए। अरे साहब सिद्ध अवस्था कैसे बदलती है, क्या बात कर रहे हो आप, सिद्धों में तो सिद्ध तो हमेशा के लिए हो गए हैं, सिर्फ सिद्ध भी कोई बदलते हैं क्या, अब आसन बदलेंगे क्या, अब वहां से गमन करेंगे क्या, अब हिलेंगे तो लेंगे क्या, अब नीचे उतर करके आएंगे क्या कि नहीं आएंगे, क्या उतर करके तो नहीं आएंगे, हिलेंगे तो लेंगे भी नहीं, लेकिन उत्पाद ये फिर भी पाए हमने। साहब अब क्या जरूरत है, सवाल जरूरत का नहीं है, वस्तु का स्वरूप है, हर काम जरूरत से ही स्वार्थ ही है, तू सब जगह पर यही देखता है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, वस्तु का स्वरूप है भाई, इस वस्तु के स्वरूप को जानो, ये जानने के लिए है ये सारी की सारी चर्चा। चलिए उत्पाद ये द्रव्य की चर्चा अत्यंत संक्षेप में यहाँ पूर्ण हुई। सही बात है, उत्पाद ये के बिना ध्रुवता नहीं होती, ध्रुवता के बिना उत्पाद ये नहीं होता, सागर के बिना लहर नहीं और लहरों के बिना सागर नहीं, ये तो स्वरूप है, उस स्वरूप में शामिल है। इस तरह उत्पाद ये द्रव्य इस सूत्र की चर्चा करते हुए अपनी ये बात यही विराम को प्राप्त होती है। उसे प्रेट कर दिया इसको, ठीक है ना। चलिए एक नई चर्चा इस पांचवे अध्याय से, ये बहुत नई चर्चा, उत्पाद या द्रव्य की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, सारा जैन शासन जिसके ऊपर टिका हुआ है, जैन शासन टिका हुआ है उसके ऊपर, बोले वो क्या है, जैसे उत्पाद में ध्रुवता की बात कही थी ना, परमानेंसी विद चेंज, बदलाव के साथ में ईसाई, ईसाई के साथ में बदलाव, बात जच नहीं रही थी, बात समझ में नहीं आती थी, तो आचार्य देव ने कहा सुनो समझने का फॉर्मूला समझो, समझने का क्या फॉर्मूला है, एक सूत्र दिया है इसमें, अर्पितान नरपित सिद्धे 32, पांचवे अध्याय का एक महत्वपूर्ण सूत्र है अर्पितान नरपित सिद्धे, ओ क्या चीज है अर्पितान नरपित सिद्धे, ये क्या है, मुख्यता और गौण का, अर्पित माने मुख्य, अनर्पित माने गौण, अर्पित अनर्पित मुख्यता और गौणता, अरे मुख्यता और गौणता के ऊपर सारी बातें टिकी हुई है, मुख्यता और गौणता के आधार पर जब जिस बात को हाईलाइट करते हो वो मुख्य हो जाती है, और जिसकी चर्चा नहीं होती है वो अपने आप गौण हो जाता है, वस्तु के स्वरूप की चर्चा मुख्यता और गौणता से होती है, हर विवाद का हल हो सकता किस आधार पर, मुख्यता और गौणता के आधार पर, झगड़ा इस बात का है कि नहीं ऐसा ही है, मैं तो दूसरे पक्ष को मानता ही नहीं हूं, इसलिए झगड़ा है, विवाद किस वजह से खड़ा होता है, विवाद इसलिए खड़ा होता है, अजी साहब नित्य कोई मानूंगा मैं तो, नित्य ही है अनित्य नहीं है, सामने वाला कहता है वस्तु का स्वरूप तो अनित्य ही है, हम तो अनित्य को ही मानेंगे, नित्यता को नहीं मानेंगे, तो आचार्य देव कह रहे हैं भाई साहब कभी नित्य मुख्य करके बात करो, कभी अनित्य मुख्य करके बात करो, मुख्यता और गौणता से वस्तु की सिद्धि होती है, सदा काल एक ही चीज मुख्य नहीं होती, एक लड़के की बारात जा रही थी, घोड़ी में बैठ करके जा रहा था, और घोड़ी पे जाते जाते जब उसको देखा तो कई लोगों ने मजाक बना दी उसकी, कुछ कह दिया यार शर्म नहीं आती है, सवान छू रहा है, तेरे दादाजी पैदल चल रहे हैं नीचे, तो बैठ करके चल रहा है, क्या करें बोलो, वो नीचे उतर गया, दादाजी आप बैठो, पागल हो गया इस उम्र में, शायद तो तेरे ही बैठना है अभी, तुझे ही बैठना है कि नहीं नहीं मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप बुजुर्ग हैं आप पैदल चले और मैं घोड़ी पर चलूं, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा जिसकी शादी होती है उसी को ऊपर बैठाया जाता है, गीत तो उसी के गाए जाते हैं जिसकी शादी होती है, ये मुख्यता गौणता को हम कितना भली प्रकार समझते हैं, सुनो जिसकी चर्चा आपने शुरू कर दी वो वस्तु मुख्य हो जाती है। इतनी बड़ी सभा में यहाँ बैठे हुए लोगों में से जिसका नाम लिया वो मुख्य हो गया, और जिसका नाम नहीं लिया वो गौण हो गया। कोई व्यक्ति ये कहे कि गौण पर नहीं हमारा नाम ले लिया करो, कोई बात नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि भाई रमेश भाई मुख्य हैं, कि महेंद्र भाई मुख्य हैं, हम मानते हैं ये बात, लेकिन कभी कभी हमारा भी नाम ले लिया करो, गौण पर नहीं सही। ऐसा नहीं होता है, जिसका नाम ले लिया जाता है वो 100% मुख्य हो जाता है, जिसकी चर्चा चलती है वो मुख्य हो जाता है। वस्तु के स्वरूप में ये बात शामिल है, वाणी का ये धर्म है। एक समय में एक ही बात कही जा सकती है कि वाणी का धर्म है मुख्यता और गौण का। वस्तु में सभी धर्म एक साथ रहते हैं, वस्तु में उत्पाद और ध्रुवता ऐसे टाइम है, हर समय है। जब देखो तब उत्पाद या ध्रुवता वस्तु में है, जब ये पर्यायात्मक वस्तु सदा काल है, लेकिन वाणी से जब वचन करेंगे कहेंगे तो कभी ध्रुवता की बात कहेंगे, और कभी प्रसंग होगा किसी के यहाँ मौत का प्रसंग होगा तो हम क्षण भंगुरता और वैराग्य की चर्चा करेंगे। क्या नहीं करेंगे ऐसा, किसी के यहाँ मौत हो गई तो हम क्या कहेंगे, अरे साहब सब आसार है, सब क्षण भंगुर है साहब, सब नाशवान है, मरना सबको एक दिन, सबको एक न एक दिन जाना ही है, कोई स्थिर नहीं है, जो आया है वो जाएगा, यही बात करेंगे ना हम। एक वक्ता यहाँ मंच पर बैठकर एक घंटे व्याख्यान करे और वो उत्पाद ये की चर्चा करता रहे कौन घंटे एक घंटे तक, उसका व्याख्यान खत्म हो जाए, कोई टॉपिक था उनका। फिर दूसरे वक्ता आए और वो ध्रुवता की चर्चा करे तो पब्लिक को ऐसा लगता है पहले वाले व्याख्यान को पूरे को धो दिया इन्होंने, ऐसा लगता है देखने वालों को, ऐसा लगता है अरे लेकिन भाई उन वक्ताओं में विरोध नहीं है, कोई एंगल बदल करके बात कहिए, दृष्टि बदल करके बात कहिए। हमारे यहाँ वस्तु का प्रतिपादन मुख्यता और गौणता से होता है, ये अर्पित अनर्पित सिद्धे, ये सिद्धि होती है वस्तु की। एक पक्ष को लेकर के बैठ जाए कोई ऐतराज नहीं, चर्चा एक पक्ष से करो हमें कोई ऐतराज नहीं है, दूसरे पक्ष का सर्वथा निषेध कर दो उससे ऐतराज है, निषेध नहीं है, हमें स्वीकार है, दूसरा पक्ष भी हमारे को स्वीकार है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। उत्पाद व्यय की चर्चा चलेगी तो उत्पाद व्यय की बात करेंगे, जब ध्रुवता की चर्चा चलेगी तो ध्रुवता की बात करेंगे, नित्यता की चर्चा चलेगी तो नित्यता की बात करेंगे, अनित्यता की होगी तो अनित्यता की बात करेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है उससे, हाँ हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिसकी चर्चा कर ली वो मुख्य हो गया। इसको ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां है ना, ये बहुत अच्छे से जानती है। क्या 30 सेकंड का यदि उनका एडवर्टाइजमेंट दिखाना है मान लीजिए टीवी पर, किसी एक पर्टिकुलर चीज का, किसी भी चीज के बारे में बात कर लीजिए, मान लीजिए किसी साबुन का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कौन सा साबुन काम में लेते हैं भाई बता दो, ऐड कर देता हूँ, कौन सा सर्फ, सर्फ चलेगा, सर्फ का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है 30 सेकंड के लिए, सर्फ 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 की बात करेगा वो। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम सर्फ के इतने गीत गा रहे हो, दूसरे की बात तो कह दो कुछ तो, दूसरे की क्यों प्रशंसा करें, अरे प्रशंसा मत करो, तुम निंदा करते हुए कह दो कि निर्मा अच्छा नहीं है, इतना तो कह सकते हो, वो नहीं कहेगा, वो जानता है 30 सेकंड में से यदि मैंने 2 सेकंड के लिए भी निर्मा का नाम ले लिया तो लोगों के दिमाग में निर्मा घुस जाएगा, समझ में आ रही, रील घुस जाएगा, जो दूसरा डिटर्जेंट है वो चला जाएगा, उसका नाम लिया और वो हाईलाइट हो गया, आप समझ रहे, जिसका नाम लिया वो मुख्य हो गया, उन्हें अपने पूरे एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को मुख्य रखना है, किसी दूसरे को मुख्य नहीं करना है, बाकी सब गौण है। दूसरे को दिखाएंगे नहीं ना महेंद्र भाई, तो दिखाएंगे, नाम नहीं लेंगे किसी का, ये इतना अच्छा है और ये बेकार है, बस दूसरे बेकार है, नाम नहीं, जिसका नाम लेते हैं वो मुख्य हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम प्रतिपक्ष को गौण करके बात करें, ये वस्तु का स्वरूप देखो, ये देखने की कला है, ये जैन दर्शन का एक अद्भुत तरीका है, इसे नय पद्धति कहते हैं, इसे त्यागवाद पद्धति कहते हैं, ये अनेकांत को देखने का नजरिया है, किसी एक पार्ट को यदि आपको गहराई से देखना हो तो एक आंख को बंद करके देखा जाता है, यही स्टाइल है। कोई व्यक्ति जिसका काम तीर चलाना है, मान लीजिए तीरंदाज है, एक आंख बंद करता है और निशाना साधता है, बंदूक चलाता है, बार बार एक आंख को बंद करना पड़ता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका काम रत्न देखने का है, तो वो क्या करता है कि लेंस लगाता है, एक आंख बंद करता है और वो उसको उठा करके उसको देखता है, एक आंख को बंद करके दूसरे से देखता है, चेक करता है बार बार में। वो व्यक्ति यदि कदाचित जो ऐसा काम करता था तो बार बार में आंख बंद। तो बगल में एक लड़का बैठा था, उसने कहा, अंकल आप बार बार में आंख बंद क्यों करते हो? कि बेटा इसको बंद करता हूँ तब जाकर के अच्छा देख पाता हूँ, इसको जरूरी है इसको बंद करना। तो अंकल छोड़ लो ना इसको, परमानेंटली बंद कर दो ना, तो बार बार इस झंझट में खोलो बंद करो। इस झंझट से बचने के लिए उसको परमानेंट कर दो बंद। कि सुनो, यदि उसे परमानेंट बंद कर दी तो कान अकेलाएगा, अकेली एक आंख नहीं जाएगी, वो पूरा व्यक्ति ही काना हो जाएगा। इसलिए क्या करें कि जब जैसा प्रयोजन हो उसके अनुसार आंख को बंद करें और दूसरी को खुली रखें। हमारा जैसा प्रयोजन हो उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अर्पितामर्पित सिद्धे, कार्य की सिद्धि के लिए जब जैसा प्रयोजन है, कभी द्रव्यार्थिक नए से देखो। 114 नंबर गाथा प्रवचन साहब, जहाँ जहाँ ये योग्य थे कहाँ समझू थे, क्या क्या तेते आदरे आत्मार्थी जन ई, तो आत्मार्थी जहाँ जो योग्य है वहाँ उस बात को लगाओ, जो बात जहाँ योग्य है, अयोग्य बात नहीं, यहाँ ये बात नहीं है। भाई साहब क्या कला सिखा दी है, मुख्यतः भवनता की कला। ये उमा स्वामी आचार्य कैसे कलाकार है, क्या सिखाते हैं, कैसे शिक्षक हैं, जीवन जीने की कला सिखा दी भाई साहब, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दिया यहाँ अर्पितान अर्पित सिद्धे ने। घंटों व्याख्यान करो इन सूत्रों के ऊपर, अर्पितान अर्पित सिद्धे, आर्ट ऑफ लिविंग आ गया इसके अंदर। दूसरों के अवगुणों को देख करके मत देखो, नजरअंदाज कर दो उसको, गुणों को देखो और अवगुणों को न देखो, ये कला है हमारे पास में, ये अर्पितान अर्पित सिद्धे, आर्ट ऑफ लिविंग आ गया पूरा इसमें, जीवन जीने की कला पूरा का पूरा सिखा दिया यहाँ। दूसरे व्यक्ति को देख करके उसके दुर्गुणों को मत देखो, दूसरे को देख करके उसकी कमियों को मत देखो। ऐसा कैसे हो सकता है मयूर भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको देखूं और आपकी शर्ट नहीं देखूं? हो सकता है, होता ही है ना। कल आए थे दिनेश भाई भी आए थे, आपने देखा था, कल आए थे, इनको नहीं देखा कल आपने, बगल में बैठे थे आपके, रमेश भाई, दिनेश भाई को देखा था कल, देखा था, कौन से कलर की शर्ट पहन के आए थे? नहीं जाने कौन से कलर की शर्ट पहन के आए थे। अच्छा शर्ट पहन के आए थे या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है? माने शर्ट पहन करके आए हैं, आपने इनको देखा लेकिन शर्ट नहीं देखा, ऐसा होता है नहीं भाई? देख करके भी नहीं देखे, हाँ भाई साहब ऐसा होता है, ये कला है मुख्यता और गौणता की। कोई व्यक्ति कभी चश्मा लगाता और कभी नहीं लगाता हो ना, उसके बारे में पूछो, इन्होंने कल चश्मा लगाया था, क्या पता है, ध्यान नहीं है, इनका चेहरा देखा कि नहीं? चेहरा तो देखा है, तो चश्मा देखे, चश्मा नहीं देखा, चेहरा देखा और चश्मा नहीं देखा, जब हो गया, चेहरा देखा और चश्मा नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है, हो जाता है ऐसा। इसीलिए कह रहे हैं, सुनो दिनेश भाई, गजब की बात कह रहा हूँ, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, आत्मा में पर्याय भी है और द्रव्य भी है, द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि द्रव्य दृष्टि ही हमारा प्रयोजन है, पर्याय को निकाल दो, कि सुनो पर्याय को निकालना वैसे ही होगा जैसे एक आंख फोड़ लेना, तो फिर क्या करें, पर्याय को पर्याय में रहने दो, दृष्टि वहां से हटा करके द्रव्य पर दे दो। क्या पर्याय कुछ नहीं करना है, लक्ष्य बदलना है। किताब पर्याय है ना, ये डिस्टर्ब करती है बार बार में, ये पर्याय की वजह से डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज्यादा, इसलिए पर्याय को हटा दो। जब तक ये पर्याय हटेगी नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। जिसको काम तो इसी में करना है, पर्याय बनी रहेगी और दृष्टि में नहीं आएगी। ये चमत्कार है दृष्टि का, काम करना है। ये सब द्रव्य द्रव्य दृष्टि के लिए फॉर्मूले हैं। ये सब इस श्रुति ज्ञान का चमत्कार है। ये समंत भद्राचार्य देव ने एक स्थान पर ऐसा प्रयोग किया मुकुंद भाई कि सुनो, तुम्हारा जो ये श्रुति ज्ञान है ना, ये श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान से बढ़िया है। क्या खतरनाक बात के लिए, घबराना मत, एंगल से बात है। एक एंगल से रही, सर्वथा नहीं लगाना। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। केवल ज्ञान की तो अपूर्व महिमा है, केवल ज्ञान की हम क्या बात करें। लेकिन एक स्थान पर ऐसा प्रयोग कर दिया गया कि श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान से अच्छा है। तुम जो रोते रहते हो ना, मेरे पास तो श्रुति ज्ञान है, मैं क्या करूं, कब केवल ज्ञान होगा, मेरे पास तो श्रुति ज्ञान है, इससे क्या होता है। कि सुन, केवल ज्ञान में वो फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी तेरे श्रुति ज्ञान में है। क्या बात कर रहे हो, कौन सी फैसिलिटी की बात कर रहे हो, कौन सी विशेषता की बात कर रहे हो आप। है एक विशेषता ऐसी, क्या है उस विशेषता का नाम, बोले अर्पिता अनर्पित सिद्धि, मुख्यता और गौणता। केवल ज्ञानी नहीं कर सकते, सब कुछ दिखेगा उनके से एक साथ ज्ञान में, वो नहीं कर सकते। मैं इसे नहीं, क्या नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता। आपके पास फैसिलिटी है, आप नहीं देखना चाहते तो मत देखो। आपके पास में है एक चीज ऐसी, आप किसे देखे और किसे नहीं देखे, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम नहीं देखे, नहीं देखे, नहीं देखे, संभव है ऐसा। आप जैसा चाहें, जिसे देखना चाहें उसे देखें, और जिसे नहीं देखना चाहें उसे नहीं देखें। ये विशेषता हमारे पास में, गौणता की कला, ये कला आनी चाहिए हमारे को। जिसने ये कला सीखी, गौण कैसे किया जाता है, पदार्थों को गौण किस प्रकार से किया जाता है, ये कला जिसने सीख ली, जिनारम का मर्म सीख लिया। इस अर्पिता अर्पित सिद्धे को त्यागवाद कह सकते हैं। ये त्यागवाद है, वचनों में होती है मुख्यता गौणता। एक बात कही हमने, क्या कहें हम, बताओ। कोई व्यक्ति मेरे से ये पूछेगी, पंडित जी क्या करते हो, अब मैं क्या बताऊं, बताओ। अब एक वाक्य में तो एक ही बात कही जा सकेगी, बोलो। बिजनेस करते हो, काम करते हो, खाते पीते हो, नहाते धोते हो, प्रवचन करते हो, आप क्या करते हो, बताओ। संपादक हो कि हाँ, पढ़ाते हो कि हाँ, प्रवचन करते हो कि हाँ, तुम हो कौन, ये तो बताओ। अरे भाई बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत सारे काम हैं। अब किस समय कौन सी बात कही, अब आप कोई व्यक्ति ये कहेगी, अरे क्या बात करते हो आप, तो समझ नहीं आता करते क्या। अरे बहुत सारे काम करते हैं हम, ऐसा नहीं हो सकता है क्या। एक व्यक्ति के बारे में चर्चा चले, बतलाओ, मैं आपसे पूछता हूँ, मयूर भाई कैसे हैं, बोलो बोलो महेंद्र भाई, जवाब दो, क्या जवाब दे सकते हो आप। न्यूरोलॉजिस्ट है, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा था कि यहाँ बैठे हुए लोगों में सबसे लंबे हैं। एंगल है, दृष्टि बदल करके भी तो बात हो सकती है ना। आप किसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हो, एंगल अलग अलग हो सकते हैं ना। मैंने यदि दूसरे एंगल से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनका वजन 75 kg है, बोलो। नहीं कह सकते, कह सकते कोई कहेगी यार एक बात बतलाओ यार, 7 feet के हैं, 6 feet के, 6.5 feet के हैं, या फिर 75 kg वजन वाले हैं, दोनों में से कौन सी बात सच्ची है। दोनों सच्ची है, वजन के एंगल से देखते हैं तो वो सच्ची है, हाइट के एंगल से देखते हैं तो वो सच्ची है, प्रोफेशन के एंगल से देखते हैं तो कोई दूसरी बात सच्ची है, नेचर के एंगल से देखते हैं तो बहुत अच्छे हैं, लगनसार हैं, हंसमुख है। अरे कितनी बातें कह रहे हो आप। लड़की के लिए बार देख करके आए, 4 लोग गए थे देखने के लिए, लौट करके आए कैसे हैं, हर व्यक्ति अलग अलग बात कहता है। हर व्यक्ति अलग अलग बात कहता है, 4 लड़के देख के आए कि एक ही। लड़के कितने देखे, अरे एक ही देखा है, लेकिन 4 एंगल से देखा है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है भाई साहब, दृष्टि बदलते ही न्याय बदल जाता है। ये कह रहे हैं अर्पितांग अर्पित सिद्धे, गजब की चर्चा है भाई, जितनी चर्चा करो उतनी कम नजर आती है। अर्पितांग अर्पित सिद्धे सूत्र याद हो रहा है कि नहीं, इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ वही भाई, क्या कि ये याद हो जाए। हमने एक सूत्र याद कराया था, उत्पाद ले द्रव्य उत्तम सत, बार बार बोल करके ये सूत्र आपको याद करा रहे हैं। अर्पितान अर्पित सिद्धे, ये याद कीजिए इसे, अर्पितान अर्पित सिद्धे। जब कभी कोई व्यक्ति आपकी फैमिली में सामने वाला व्यक्ति किसी तरह की कोई बात करे जिसे आप ना पसंद करते हो, तो तुरंत याद करना अर्पितान अर्पित सिद्धे। भाई ये जिस एंगल से कह रहा है वो बात ठीक है, मुझे ये एंगल पसंद नहीं है, इसमें क्या है, समझ में आ रही है बात। एक वस्तु को देखने के नजरिए बहुत सारे हो सकते हैं ना, हमें कौन सा नजरिया पसंद है, सामने वाले को कौन से नजरिए से देखना पसंद है। आप यदि सामने वाले के नजरिए को पहचान लो तो झगड़ा मिट जाएगा, और यदि आपको वो एंगल पसंद नहीं है अब कौन कर दो उसको यार, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं इस काम से सुनो, सामने वाला किस काम आएगा जाने दो। तो मैं समझता हूँ ये अर्पिता नर्पित सिद्धे वाली बात कुछ आप लोगों के गले उतरी होगी, कुछ समझ में आई होगी। मुख्य का अर्पित माने मुख्य, सांग अर्पित माने गौण, गौण माने क्या होता है, सेकेंडरी कह दो, सेकेंडरी भी नहीं, साइलेंट। गौण करने का मतलब बात ही नहीं करना उसके बारे में, गौण कर दिया हमने उसको, नेग्लेक्ट कर देना, समझो इसको अपन ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, इग्नोर करना उसको, इग्नोर कर दिया हमने, ध्यान नहीं है उसकी, इसका नाम है गौण। चर्चा करके ही मुख्य हो जाता है। एक व्यक्ति कई बार से आया था अपने दोस्त के यहाँ, आ गया यहाँ फ्लोरिडा घूमने के लिए आया हुआ था, ऑरलैंडो आया था, तो सोचा यहाँ मिल चलूंगा, रमेश भाई से मिल लेता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं अपने यहाँ पे, फिर मिल लेते हैं, मोहित भाई से मिलने के लिए चला गया। अब मिलने के लिए कहा, वो सोच करके आया कि तीन दिन रुकूंगा यहाँ इनके साथ में। अब संयोग की चांस की बात यह है कि इनको शाम को जाना था पार्टी में, तो मैंने कहा यार पार्टी में जाना है तो भी चल यार साथ में, यार मैं तो घूमने फिरने के हिसाब से आया हूँ, जींस टी शर्ट वगैरह सब लेकर के आया हूँ, मैं सूट वूट कुछ लाया नहीं हूँ, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रहा है, ये अलमेरा में लगे ना इतने सारे सूट, कुछ भी पहन ले जो सही लगे, ठीक है। बहुत फोर्स किया तो पहन करके चला गया। जब वो गया तो वहाँ जब पहुंचे पार्टी में तो परिचय कराया, भाई मेरे दोस्त हैं जो बॉम्बे से आए हैं, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, ये सब सारा सब कुछ, और सर सारी बातें बताने के बाद मुकुंद भाई क्या कहा, लेकिन इन्होंने ये सूट पहन रखा है ना ये मेरा है। कितना दिमाग खराब हुआ उसका, घर लौट करके आने के बाद में झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा। ये क्या तरीका है, ऐसे कोई परिचय कराता है, ये सूट दे रहा है, क्या जरूरत थी ये कहने की, सॉरी यार गलती हो गई। दूसरे दिन फिर जाना था, शादी पार्टी में जाना था, बोले आज ये मत कहना कि ये सूट दे रहा है, इस तरह की बात मत करना कुछ, ये हाँ ठीक है नहीं करूंगा कोई बात नहीं, गई पार्टी में और जाकर के सारा परिचय कराया, पूरा अच्छे से परिचय कराया, बहुत लंबी चौड़ी फैक्ट्रियां हैं और इसमें इनका बिजनेस आप देखो तो मुंबई में टॉप 100 में आती है इनकी फैमिली, इतने संपन्न है ये। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इन्होंने जो सूट पहन रखा है वो घबराया, बोले नहीं जो सूट पहन रखा है ये मेरा नहीं है इनका ही है। मेरा नहीं है, अब तो सही कहा ना उसने, कहा यार ये सूट की बात करने की क्या जरूरत थी, घर आकर के फिर समझाया, देख तेरे साथ तो जाना ही बेकार है, मैं यहाँ आया था तीन दिन के लिए शांति से रहने के लिए, लेकर के भी गया वहाँ पे पार्टी में भी लेकर के गया और इंसल्ट कर दी मेरी, क्या जरूरत थी इसके बारे में कुछ भी कहने की, सूट की चर्चा करना जरूरी था, इनका है कि मेरा है, किसकी गया कोई बात। तीसरे दिन फिर जाना था, क्या कि आज ये बात नहीं कहेगा तू कि तेरा है या मेरा है, कि नहीं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, घबराया मैं, चिंता मत कर यार कुछ चल मेरे साथ में। और फिर तीसरे दिन जाकर के फिर परिचय दिया पूरा, और पूरा परिचय देने के बाद में क्या कहा, नहीं इन्होंने जो सूट पहन रखा है ना ये इनका है या मेरा इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इनका है या मेरा इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहेगा, अरे तूने सब कुछ कह दिया। कहने की जरूरत क्या थी, बोलने की जरूरत क्या थी। मौन रहने का नाम है गौणता। तुम बोले और वो चीज हाईलाइट हो गई। आप समझ रहे हैं, मुख्यतः गौणता समझा रहा हूं आपको। आप यदि उस विषय के बारे में कुछ भी बोल लिए, इसका मतलब वही बात हाईलाइट हो गई, वो मुख्य हो गई। वस्तु में द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु में दोनों चीजें मौजूद है, द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अब जब बात चलती होती है नित्यता की, जब बात चलती होती है ध्रुवता की, जब बात चल रही होती है परमानेंट वस्तु की, त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा की चर्चा चल रही होती है, तो सामने से कहता है कि एक प्रश्न है मेरा कि फिर राग द्वेष भी है ना, कि खीर में मूसल डाल दिया तूने, क्या करता है। जब हम तेरे को परमानेंट वस्तु की बात बतला रहे हैं, जब हम तेरे को कारण परमात्मा की बात समझा रहे हैं, तो तू बीच में उत्पाद है राग द्वेष विकार की बात लाता क्यों है। मतलब उस चर्चा के बीच में, कारण परमात्मा की चर्चा के बीच में पर्याय की बात ले आएगा। पर्यायों की बात चल रही होगी, वो समझा रहे होंगे आचार्य देव, तो फिर ध्रुवता बीच में ले आएगा। अरे भैया, जो विषय समझाया जा रहा है उस विषय को उसी की स्टाइल में समझो, गहराई से, उसमें फेरबदल मत करो। ये जिनवाणी सिखा रही है, क्या कला सिखाती है जिनवाणी, ये कला सिखा रही है जिनवाणी हमारे को, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन किस तरह से जिया जाए। अर्पिता नर्पित से जीवन जियो, एक बात शब्द कठिन है, हो सकता है पहले कभी नहीं सुने हो। अचानक किसी व्यक्ति के सामने बोलो आप अर्पिता नर्पित सिद्धे, दो व्यक्तियों को झगड़ते हुए देखा हमने, एक कुछ कह रहा था दूसरा कुछ कह रहा था, दोनों आपस में लड़ रहे थे, हम सामने बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, क्यों, क्योंकि मन में बोल रहे थे अर्पिता नर्पित सिद्धे। हमें ये बात समझ में आ रही थी, दोनों झगड़ में पागल है, एक एक बात को हाईलाइट कर रहा है, दूसरा दूसरी बात को हाईलाइट कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, दोनों बातें नहीं हो सकती है क्या। लेकिन दो बातें हैं इसमें, एक बात ध्यान रखना, एक सावधानी की बात कहता हूं बीच में, दो एंगल वस्तु में हो उनको ही स्वीकार करना, जो वस्तु में नहीं हो उसे स्वीकार मत करना। ऐसा नहीं हो सकता है, अग्नि कैसी है, दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, अग्नि कैसी है, एक कह रहा है गर्म है, दूसरा कह रहा है ठंडी है, बोलो क्या करें, अर्पिता नर्पित लगा लें, थोड़ी गर्म थोड़ी ठंडी, लगेगा ऐसा नहीं लगेगा, उसमें शीतलता है ही नहीं, उसमें शीतलता नाम का गुण नहीं है, वो बात वहां लागू नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो जैन परंपरा में अनेकांत कहा गया है, अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये सूत्र अनेकांत को सिद्ध करने के लिए है, अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि करने के लिए है। समझ में आ रही है बात, वो प्रतिपक्ष क्या हो सकता है उस एंगल को देखने के लिए है। झगड़ा मिट जाएगा, थोड़ा शांत दिमाग से सोचो तो सही, क्या कारण हो सकता है। मुकुल भाई, ऐसा हो सकता है आपने किसी व्यक्ति को मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप पर, ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन लिखा रहे था, ऑनलाइन देखा, आपने उसको कॉल लगाया, क्या आपने उसको कॉल लगाया और उसने कॉल काट दिया, अब आपको कितना गुस्सा आएगा, कैसे व्यक्ति है, मैंने कॉल लगाया रिसीव और रिसीव नहीं किया, मान लो आपको कितना बुरा लगेगा, काट दे तो कितना बुरा लगेगा। आप हो सकता है जीवन भर के लिए उनके प्रति गांठ बांध लो अपने दिमाग में, हो सकता है ना, संभव है ना ऐसा। आप ये दुश्मनी बांध सकते हो, आप बैर बांध सकते हो, आप अनंतानुबंधी बांध सकते हो, आप दुश्मनी हो सकती है तुम्हारी उनके साथ में, किस किस वजह से, वजह क्या थी, फोन नहीं लिया उन्होंने, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, ये भी हो सकता है कि वो जिन्होंने फोन नहीं लिया है वो खुद ऑनलाइन नहीं थे, ऑनलाइन उनका बच्चा गेम खेल रहा था उससे, ये भी तो हो सकता है ना, तुमने तो ऑनलाइन देखा उसको, तुमने ऑनलाइन देख करके समझ लिया कि रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पर वो स्कूल से कुछ वो मंगवाया था होमवर्क अपने फ्रेंड से, और वो बच्चा बैठ करके वो होमवर्क कर रहा था, तुम कह रहे हो कि फोन रिसीव नहीं कर रहा है, तुमने जीवन भर के लिए गांठ बांध ली, नहीं हो सकता है ऐसा, हमारे घरों में बच्चे नहीं करते, हमारे यहाँ तो बेटा लेकर के बैठा रहता है, वो होमवर्क करता रहता है, वो उसके अंदर कई काम करता रहता है वो, और सामने लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार पंडित जी ने हमारे को नेगलेक्ट कर रहे हैं, दो बार फोन मिला है फोन काट देते हैं, ये हमें अवॉइड कर रहे हैं। अरे भाई नहीं कर रहे हैं, तुम अपनी निगाह बदलो, तुम अपनी दृष्टि बदलो, तुम पॉजिटिव सोचो। ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, अर्पिता अर्पित सिद्धे के माध्यम से। तुम अपनी सोच बदलोगे तो बहुत अच्छा फील करोगे, नजरिया बदलो, ये देखने का नजरिया ही तो है और क्या है। ये सूत्र यहाँ सिखा दिया गया, समझ में आ गया क्या आपके? अर्पित अनर्पित सिद्धे, मुख्यता और गौणता से वस्तु की सिद्धि हो गई, ठीक है। तो ये मुख्यता गौणता की बात यदि इतनी आप लोगों के समझ में आ गई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, डे टू डे लाइफ में, अपने झगड़ों में, अपने विवादों में, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, अपने साथ बनने वाले वार्तालाप में, घर गृहस्थी में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, देवरानी जिठानी के बीच में, सास बहू के बीच में, जहाँ जहाँ आपको ये जहाँ कंट्रोवर्सी दिखाई देती है, वहाँ आप इस अर्पिता नर्पित सिद्धे को अप्लाई करो। क्या आप कैसा फील करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का कॉल आया अभी यहाँ, बोलो बरसात आ रही है कि नहीं आ रही है, आप क्या करेंगे? नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है, समय
हो
गई, यहाँ नहीं आ रही है ना, लेकिन मायामी में नहीं आ रही है ये तो नहीं कहा जा सकता है। शाम को 6:30 की बात चल रही थी, 6 की बात चल रही थी, कल शाम को 6 बरसात आई, एक ने कहा बरसात आई, दूसरे ने कहा नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, अब झगड़ रहे हैं दोनों, और मालूम चला दोनों 20 माइल की दूरी पर थे, जबरदस्ती झगड़ रहे हैं। झगड़ने का कुछ मुद्दा ही नहीं है, थोड़ा सा शांत दिमाग से देख लिया जाए तो झगड़ा ही, झगड़ा सारा अशांति में होता है, शांति रखो थोड़ी सी, झगड़ा मिट जाएगा। अच्छा, अशांत चित्त वाला व्यक्ति कोई समाधान करने में समर्थ नहीं होता, शत्र चूड़ामणि की नीति बता रहा हूं। अशांत चित्त वाला व्यक्ति, चित्त अशांत है, अशांत चित्त में लिए गए निर्णय निश्चित रूप से तुम्हें तकलीफ प्रदान करेंगे, इससे अशांत मत रहो, शांत चित्त होकर के विचार करो। अर्पिता नर्पित सिद्धे इस सूत्र का आप विचार करें, निश्चित रूप से अपार आनंद की प्राप्ति होगी। अब बोलो क्या पढ़ना है और आगे? ये 2-3 सूत्र और है, मजेदार मजेदार है, 10-15 मिनट चर्चा करता हूँ उनके बारे में, ठीक है ना? देखो और दिखाता हूँ आपको, कुछ सूत्र इस सत्वार सूत्र महान शास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। 5वें अध्याय में जिनागम के गंभीर सारभूत सूत्र लिख दिए गए, जो जिनागम के सार हैं, जिनमें जितारा जिनागम छिपा है, ऐसे कुछ सूत्र इस 5वें अध्याय में हैं। जिन महत्वपूर्ण सूत्रों में हम सत द्रव्य लक्षणम की चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में, उत्पाद ये ध्रुवता की चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में, और अर्पिता नर्पित सिद्धे इसकी चर्चा भी आपके बीच में कर चुके हैं। अब देखो आप द्रव्य की एक और परिभाषा बतलाने वाला महत्वपूर्ण सूत्र, सूत्र नंबर है 38 नंबर का सूत्र, द्रव्य की परिभाषा बतलाई। एक 40 नंबर का सूत्र है जिसमें गुण की परिभाषा बतलाई, और एक 42 नंबर का सूत्र है जिसमें पर्याय की परिभाषा बतलाई। क्या 2-3 सूत्र कहे मैंने यहाँ? एक 38, एक 40, एक 42, ये 3 सूत्र हैं, जिन 3 सूत्रों में द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चा की है। फंडामेंटल है क्या ये फंडामेंटल क्लियर नहीं हो ना, तो आप किसी के भी प्रवचन में जाकर के बैठो, किसी का भी सत्संग करो, कुछ फले नहीं पड़ेगा। जिसको द्रव्य ही समझ में नहीं आता हो उनको क्या प्रवचन समझ में आएगा, पर्याय ही समझ में नहीं आता हो उनको क्या समझ में आएगा। तो क्या होता है पर्याय? और कोई ज्यादा ही देर अकल वाला समझदार हो तो भी अनर्थ कर देता है, इसलिए समझदारी से काम लिया जाना चाहिए। द्रव्य किसका नाम है? तो 38 से बात करते हैं हम, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वत् द्रव्यम, द्रव्य क्या है? गुण और पर्याय वत् द्रव्य क्या है? गुणों और पर्यायों का समुदाय द्रव्य है। कई स्थानों पर गुण समुदायो द्रव्यम भी कहा है, गुण समुदायो द्रव्यम की चर्चा भी आई है। यहाँ गुण पर्याय वत् द्रव्यम, गुण और पर्यायवान द्रव्य है। वस्तु में गुण भी है और वस्तु में पर्याय भी है। गुण क्वालिटीज हैं, पर्याय उन गुणों की प्रकटता है। समझ में आ रही है बात? पर्याय वो लहरों की तरह है और गुण ये रत्न की तरह है। गुण वे रत्न हैं और पर्याय वो उनका प्रकाश है। प्रेजेंट पोजीशन का नाम पर्याय है। गुण और पर्याय, हर वस्तु में गुण पर्याय हैं। ये गुण क्या होता है और पर्याय क्या होता है, ये प्रश्न किया किसी ने, ये बतलाओ गुण और पर्याय क्या होता है? गुण किसे कहें? साहब आपने गुण पर्याय वाले को द्रव्य कहा, द्रव्य पढ़ा रहे थे आप इस पांचवे अध्याय में, आपने गुण पर्याय वाले को द्रव्य कहा। हमारा प्रश्न ये है गुण क्या होता है? गुण तो बदल भी जाते हैं ना। गुण गुण क्या चीज होती है? गुण बदल गए। ये बहुत पहले तो बहुत सरल स्वभावी थे, आजकल तो बहुत तेज 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 हो गए, इनका गुस्सा बहुत तेज है। ये गुण है ना उनका, ये गुण नहीं है। द्रव्य के गुणों की चर्चा चल रही है, तो मनुष्यत्व के गुणों की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ शेर का स्वभाव कैसा है? क्रूरता। शेर तो बहुत क्रूर होता है ना, क्रूरता शेर का स्वभाव है। फिर बतलाओ दो मुनिराजों ने उपदेश दिया, फिर शेर की क्रूरता कहाँ चली गई? इसका मतलब शेर का स्वभाव नहीं है क्रूरता, उसका गुण नहीं है। समझ में आ रही है? बस टेम्परेरी स्वभाव है। पर्यायगत स्वभाव वर्तमान में दिखाई दे सकता है थोड़ा बहुत। गुण अलग चीज है, जो परमानेंट रहते हैं ये गुण है, जो बदल जाए उसे गुण नहीं कहते। अरे साहब किसी के गुणों का वर्णन करते समय क्या कहते हैं? ये बहुत सरल स्वभावी है, ये बहुत मिलनसार है, हैं इनका नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत हंसमुख है। जैसे किसी किसी की तारीफ करते हैं अपन, इस तरह की बातें बहुत बतला देते हैं किसी किसी के बारे में, अरे सर बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसी चर्चा कर लेते हैं अपन किसी व्यक्ति के संबंध में। तो हमें बतलाइए इनके गुणों की चर्चा हुई है? और तो और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है मुकुंद भाई, जब किसी की चर्चा की जा रही हो, धन की प्रशंसा कर रहे हो, संपत्ति की प्रशंसा कर रहे हो, और ये मूर्ख अपनी प्रशंसा समझता है। किसी व्यक्ति के बारे में ये कहें, अरे महेंद्र भाई आपका मकान बहुत बड़ा है, समझते मेरा मेरी प्रशंसा हो रही है, आपका बिजनेस बहुत है, आपको पता है ये इनका बिजनेस कितना बड़ा है, आपको पता है ये कितनी बड़ी पोस्ट पर है, ये समझता है मेरी प्रशंसा हो रही है। अरे सुनिए तेरी प्रशंसा नहीं है, पोस्ट चले जाएगी रोड पर आ जाएगा जी। ये संपत्ति की प्रशंसा मेरी प्रशंसा नहीं है, ये संयोगों की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा समझ रहा है, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। तेरी प्रशंसा यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा उमा स्वामी आचार्य कर रहे हैं, तेरी प्रशंसा धनगर परमात्मा करते हैं, गौतम स्वामी करते हैं, तेरी प्रशंसा साक्षात भगवान महावीर स्वामी किया करते थे, तो वो प्रशंसनीय तत्व है, उसको देख। तो तू उसको नहीं देख रहा है तो किसको देखा? अरे सब मैं गुण को देख रहा हूँ। गुण देख किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा देख, गुण किसे कहा? द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रित रहते हैं। और निर्गुणा गुणा, निर्गुण माने गुण में गुण नहीं रहते, गुण में कोई दूसरा गुण नहीं है, एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, क्योंकि द्रव्य गुण कहते हैं निर्गुण। क्या गुण है? निर्गुण माने गुणों में कोई दूसरा गुण नहीं रहता, लेकिन सारे के सारे गुण रहते कहाँ हैं? कि द्रव्य में रहते, वस्तु में रहते, द्रव्याश्रय, द्रव्य का आश्रय करके रहते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, द्रव्य का आश्रय करके रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं, तो द्रव्य में रहते हैं लेकिन द्रव्य से अलग नहीं होते कभी भी। द्रव्य में रहते हैं ये ऐसा समझता है आत्मा एक द्रव्य और ज्ञान एक गुण, दर्शन एक गुण, सुख एक गुण, चारित्र एक गुण, अस्तित्व एक गुण, और ये ज्ञान दर्शन सुख भी अस्तित्व चारित्र वगैरह आत्मा रूपी डब्बे में भरे होंगे। कैसा है? आत्मा द्रव्य है, वस्तु द्रव्य है, उस वस्तु में सारे गुण ऐसे भरे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, वस्तु में भरे हुए नहीं है। समझ आ रही बात आपको? वस्तु में ये गुण धर्म आदि गुण इस तरह के भरे हुए नहीं है, उन गुणों का समुदाय ही वस्तु है। पॉइंट बतलाता हूँ, जैसे आपको समझिए, हमने कहा लड्डू में शुगर, लड्डू में शुगर एक वाक्य कहा। दूसरा वाक्य हमने कहा शुगर का लड्डू। कुछ फर्क समझ में आया दोनों वाक्यों? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमने कहा मिठाई में चीनी और हमने कहा चीनी की मिठाई, क्या फर्क है दोनों में? एक में तो संयोग संबंध दिख रहा है, संयोग दिख रहा है, पहले अलग था और उसमें है, ऐसा संयोग दिखाई दे रहा है। और दूसरे में क्या बात कही गई है? दूसरे में कहा गया संयोग नहीं है, वो बना ही उसी का है। तो आत्म वस्तु की यदि चर्चा की जाए तो आत्मा बना ही गुणों से है, आत्मा में अनेक गुण भरे हुए हैं। ये गुण गुण पर द्रव्यम द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, निर्गुण है ये गुण है, जो निर्गुण होते हैं उनका नाम गुण होता है। समझ में आ रही है बात? निर्गुण को गुण कह दिया गया। चलिए एक और दो मिनट में पूरी करते हैं अपन बात को, कितना सही समय बचा है अब हमारे पास में। क्या चर्चा है? सद्भाव है, परिणाम है, ये पर्याय है। परिणाम माने होता है पर्याय, ये क्या चीज है? पर्याय क्या चीज है? ये कभी कभी कोई लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, पर्याय को अलग कर दो, पर्याय द्रव्य में शामिल नहीं है, पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं है, उनको इस सूत्र को गहराई से पढ़ना चाहिए। सद्भाव है, परिणाम है, वस्तु का जो भाव है सद्भाव है, परिणाम वही पर्याय है, वस्तु जिस पोजीशन में है वही पर्याय है, जो उसकी दशा है, जो उसकी अवस्था है, जो उसकी हालत है, वस्तु की जो प्रेजेंट पोजीशन है वही पर्याय है। अरे पर्याय को निकाल दो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर्याय द्रव्य में से निकल कैसे सकती है? मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है, बहुत पुराना, बचपन में सुना था। एक व्यक्ति, एक बूढ़ी अम्मा, उसके घर में एक बर्तन था लोहे का, लोहे का बर्तन था, कोई कढ़ाई जैसी कुछ थी या स्टील का कुछ बर्तन था, तो समझ लो आप भगोनी जैसा। वो हाथ से छूट गया, हाथ से छूट गया तो उसमें मोच पड़ गई, डेंट पड़ गया उसमें। तो अम्मा उसे सुधरवाने के लिए गई मार्केट में, और मार्केट में सुधरवाने के लिए गई तो कहा इसका जो डेंट है इधर पिछड़ गया है, इसको सुधार दो। तो उसने उसको सुधारा, दूसरे साइड से उसने छोड़ा, उसको निकल गया, उसका डेंट निकल गया। कहा लाओ अम्मा 5 रुपए, पुराने जमाने की बात है, 10 रुपए मांग लो, $2 दो। ठीक है मैं निकालती हूँ, तुम भगवानी के साथ साथ में मेरा वो डेंट भी दे दो। क्या मतलब? क्या आपने निकाला ना इसमें से? निकाल करके खुद ही रखोगे? तुमने इसमें से निकाला है, तुम मुझे वो डेंट दे दो, मैं तुम्हें $2 दे देती हूँ। उसने देर होशियारी दिखाई थोड़ी सी, ये सोच करके कि थोड़ा सा झगड़ूंगी अभी, बिना पैसे काम हो जाएगा अभी, ये सोच करके उसने कहा कि लूट रहे हो मेरे को, ये क्या लूट मचा रखी है, तुमने मेरी चीज ली क्या? तो अब पैसे किस बात के? मेरी चीज वापस दो और पैसे ले लो, नहीं तो नहीं मिलेंगे तुम्हारे वो पैसे। तो ज्यादा कुछ बात हुई तो उस व्यक्ति ने कहा माँ जी तुम्हें डेंट चाहिए, एक चोट मारी दोबारा, जो तुम्हारा डेंट ले जाओ वापस। अरे भाई वो वस्तु की अवस्था में है, वो उस वस्तु की पर्याय में है, वो पर्याय अलग नहीं की जा सकती है, वो उसका ही परिवर्तन है। द्रव्य ही पर्याय रूप से परिवर्तित होता है, समझ में आ रही है बात। द्रव्य जिस रूप से बदलता है उसको ही पर्याय कहते हैं, पर्याय कोई अलग नहीं होती। क्या वस्तु के परिणाम को ही पर्याय कहते हैं, उसके परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। अब सोचो आप द्रव्य में से पर्याय निकाल करके अलग करो, कैसे होगी बताओ मुझे। क्या ज्ञान गुण में से मति ज्ञान को अलग निकाला जा सकता है? क्या श्रद्धा गुण में से श्रद्धा रूप अवस्था को अलग निकाला जा सकता है? संभव है ऐसा? तो कैसे निकालें? ये कहता है दृष्टि के विषय में से निकाल दो, पर्याय को बाहर निकाल दो। अरे भाई, दृष्टि के विषय के जोर में ये बातें कही जाती है कि पर्याय को अलोकाकाश में भेज दो, लेकिन सच्चाई ये है कौन भेजे और किसको भेजे। यहाँ भेजने का अर्थ इतना मात्र समझना चाहिए कि लक्ष्य नहीं करना है, बस इतना था। मुख्य और गौण हो गया, बस इतनी सी बात है। खत्म करता हूँ मार्मिक बात कह करके। हाँ, सागर से लहर अलग नहीं हो सकती, लहर से सागर अलग नहीं हो सकता। अरे ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी है पंचाक्षी काय ने। पंचाक्षी काय की 12 नंबर गाथा उठाओ, पंचाक्षी काय की 13 नंबर गाथा उठाओ। कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं, पद्य विदितम दब्बम दब विदता है पद्य अणस्थी दोनों आनंद भूतम भावम समना परु विनती। पर्याय दिन द्रव्य नहीं, द्रव्य दिन पर्याय नहीं। क्या कहिए? पद्य विदितम दब्बम दब विदता है पद्य अणस्थी। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होती। कि नहीं नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो आप, हमें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, हमें तो आत्मा का अनुभव करना है, अपना प्रयोजन तो त्रिकाली ध्रुव से है। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है और नहीं है और नहीं है, ऐसी बातें करते हैं लोग। हटा दो। सुनो भाई, विषय में तो शामिल नहीं है, लेकिन विषय करने वाली तो पर्याय ही है। दृष्टि का जो विषय है, जिस दृष्टि में त्रिकाली ध्रुव को देखना है, उसको त्रिकाली देखना है। वहां पर्याय को गौण किया और त्रिकाली द्रव्य को मुख्य किया, पर्याय को गौण कर दिया, त्रिकाली द्रव्य को मुख्य कर दिया गया। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, त्रिकाली द्रव्य को मुख्य किया किसने, ये बताओ? पर्याय ने। तो पर्याय शामिल है ना, विषय करने वाले के रूप में पर्याय शामिल है, विषय में शामिल नहीं है। यदि इस दृष्टि से आप दृष्टि के विषय को देखने का प्रयास करेंगे और ये जो यहाँ परिभाषाएं बतलाई है, इन परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए आप द्रव्य को, गुण को और पर्याय को देखेंगे, तो फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। ये मूल फंडामेंटल है, कम से कम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तो हमारे उपयोग में स्पष्ट रहे। तो मैं समझता हूँ ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हमारे उपयोग में स्पष्ट हुआ होगा। हम सभी इस स्वरूप को जानकर अपने द्रव्य को पहचाने और अपने द्रव्य में समा जाए, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। कुछ पूछना है?
मुझे पूछना है कि अभी आपने कहा कि जो रत्न है वो ध्रुव में।
हाँ,
आपने ये सेंसेस लगाया।
हाँ,
तो पीछे जो प्रकाश है वो अपनी पर्याय।
हाँ,
तो जो प्रकाश है वो रत्न का ही है।
हाँ,
तो मेरे ही मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, यदि मैं समझाऊ तो, यदि अपने विकारों को, विभावों को यदि शांत करना है, तो यदि हम रत्नों की तरफ जाए कोई
पर्याय सुधर सकती है, बाकी नहीं। सही बात है। माने द्रव्य दृष्टि होती है जिसकी, उसकी पर्याय अपने आप सुधर जाती है। पर्यायों में सुधार करने का उपाय पर्यायों की तरफ देखना नहीं है। त्रिकाली ध्रुव को देखने पर पर्याय अपने आप सुधर जाती है। सुधार करना है पर्याय में, लेकिन लक्ष्य करना है द्रव्य का। द्रव्य का लक्ष्य हो, परमानेंट का लक्ष्य हो। देखो, ध्यान भी करते है ना लोग, ध्यान होता नहीं है ऐसा। परमानेंट वस्तु के बिना ध्यान हो नहीं सकता है। टेम्परेरी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहोगे, हिलती हुई वस्तु पर नहीं होगा। वस्तु ध्रुव तो हो पहले, तो ध्रुव पर दृष्टि दो और पर्याय बदल जाएगी अपने आप। जिनकी दृष्टि ध्रुव पर होती है, अरे वो क्षणिक पर्याय के भी बोल ऐसे होते हैं, ध्रुव पर दृष्टि देने वाली पर्याय अपने आप को ध्रुव अनुभव करती है। वो पर्याय क्या कहती है? मैं त्रिकाली हूँ। कौन कह रहा है?
पर्याय।
पर्याय अगले समय मरने वाली है, वो पर्याय अगले समय नष्ट होने वाली है, लेकिन उस पर्याय के बोल कैसे होते हैं मैं ध्रुव हूँ, कैसे क्यों हुए ऐसे गुण? उसने वरमाला ध्रुव के गले में डाली, उसने मैं पना उस पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव में स्थापित किया। जिसने त्रिकाली ध्रुव में मैं पना स्थापित किया वो पर्याय अपने आप को त्रिकाली अनुभव करती है। त्रिकाली में अपनापन करने वाली पर्याय भी त्रिकाली वत हो जाती है, अतिंद्रिय आनंद से सराबोर हो जाती है। अतिंद्रिय आनंद प्रकट करने की यही विधि है, द्रव्य दृष्टि से जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि से विनेश्वर। पज्जय मूड़ा से पर समया और द्रव्य पर दृष्टि देने वाले वो बन गए परमात्मा। तो परमात्मा बनने का रहस्य इन सूत्रों में से निकलता है। मर्म को गहराई से समझे तो कुछ सत्य हासिल होगा, और ना समझे तो फिर चली रही है लाइन जैसी चल रही।
Yeah।